ओम शांति। बहुत समय पहले किसी एक राज्य का राजा बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी प्रजा में अशांति थी, दुख था, और वो इस कारण से बहुत दुखी था। कुछ भी राज्य में ठीक से नहीं चल रहा था। तो उसने एक दिन यह घोषणा कराई, जो भी मेरे राज्य को ठीक कर देगा उसे मैं 5 लाख रुपए दूंगा। तो मंत्रियों ने कहा, 5 लाख तो बहुत कम है, कौन आएगा राज्य को ठीक करने। कुछ समय के बाद फिर राजा ने एक दूसरी घोषणा की, जो भी इस राज्य को ठीक कर देगा उसको मैं 1/2 राज्य दे दूंगा। फिर भी कोई नहीं आया। और कुछ समय के बाद एक सन्यासी वहां आया। उस सन्यासी ने कहा, ना तो मुझे 5 लाख चाहिए और ना ही 1/2 राज्य, पर मैं आपके राज्य को ठीक कर सकता हूं, पर एक शर्त, जो मैं कहूं वो करना होगा, जो मैं निर्णय दूं उसी पर चलना होगा, मेरी हर बात माननी होगी। तो राजा हां कह देता है। वो सन्यासी कहता है कि सारे देश भर में जिसको जो शिकायत है वो सबको लिख के लाने को कहो, और वो सारी पर्चियां एक डिब्बे में डाल दी जाए, सारे पर्चे जिसमें लेटर हो, कंप्लेंट लेटर्स, ताकि जिसको जो समस्या है वो उसमें लिखी हो और वो सारी पर्चियां उस डिब्बे में डाल दी जाए। बहुत सारे खत आते हैं, बहुत सारी पर्चियां आती है, बहुत सारे लेटर्स आते हैं, और जब आना बंद हो जाते हैं तब वो सन्यासी कहता है राजा को, कोई भी एक पर्ची, एक कंप्लेंट बॉक्स में से एक कंप्लेंट निकालो। तो उसमें एक कंप्लेंट होती है, एक व्यक्ति ने लिखा होता है, मैं आपके राज्य का गरीब किसान हूं, आपका बेटा हमें बहुत सताता है, राजा का बेटा, वो एक किसान की कंप्लेंट, हमारे गांव की कन्याएं उनको भी वो सताता है, हमें भी सताता है, और हम कंप्लेंट किससे करें, किससे शिकायत करें, क्योंकि वो आपका बेटा है, राजा का बेटा है। तो राजा ये खत पढ़ता है, तो सन्यासी कहता है कि अपने बेटे को कल बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। राजा कहता है, ये मैं कैसे करूं? परंतु सन्यासी कहता है, आपने कहा था मेरी हर बात को मानेंगे। तो राजा वैसा ही करता है, दूसरे दिन अपने ही बेटे को कारागार, जेल में डाल देता है। तो राजा फिर कहता है, क्या मैं दूसरी पर्ची निकालूं कंप्लेंट से, बॉक्स से? सन्यासी कहता है, अभी कोई पर्ची निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब ये सारी पर्चियां जला दो। राजा कहता है, क्यों? तो सन्यासी कहता है, जो राजा एक अपराध के लिए अपने बेटे को जेल में डाल सकता है, ऐसे राज्य में किसी की हिम्मत नहीं होगी और कोई अपराध करने की। जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, यथा राजा तथा प्रजा। आज सुबह की साकार मुरली में भी ये बात आई है कि जैसा राजा होगा, सत्युग के वर्णन के लिए बाबा ने यह बात कही है, परंतु जैसा ही राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। इस देह के राज्य में आत्मा राजा है, कर्मेंद्रिय कर्मचारी है। यदि राजा आलसी तो कर्मेंद्रिय आलसी, यदि राजा परवश तो कर्मेंद्रिया परवश, यदि राजा विकारी तो कर्मेंद्रिया विकारी, यदि राजा में व्यर्थ। यदि राजा भटका हुआ तो कर्मेंद्रिया भी भटकेगी। यदि राजा काम वासना से पीड़ित तो कर्मेंद्रिया भी वश नहीं होगी। यदि राजा में ही अपवित्रता है, विकार है, दैहिक आकर्षण है, देह भान है, देह अभिमान है, देह अहंकार है, तो सारी कर्मेंद्रिया भी वैसे ही होगी, क्योंकि जैसा राजा है वैसी ही सारी प्रजा होगी। राजा को श्रीमत मिली है बाबा से संपूर्ण पवित्र बनने की। यदि राजा संकल्प करे पवित्र बनने का तो सारी कर्मेंद्रिया पीछे पीछे आ जाएगी, नहीं तो सारी कर्मेंद्रिया विद्रोह करेगी, रिवॉल्ट, बगावत। मन चाहेगा ये न देखो, इंद्रिया चाहेगी देखे। रूप रस स्पर्श शब्द गंध, मन कहेगा, आत्मा कहेगी ये नहीं खाओ, जीभ कहेगी खाओ, आत्मा कहेगी ये देखना नहीं चाहिए, परंतु आंखें देखेगी। राजा कहेगा ये नहीं सुनना चाहिए, ये गीत, ये संसार, परंतु कान नहीं सुनेंगे, विद्रोह होगा, अनार्की। तो इस स्व के राज्य में फिर से राजा पवित्रता का शासन करे, फिर से राजा संपूर्ण पवित्रता को जब धारण कर ले मन से, संकल्प से, तो स्वतः ही बाकी सभी इंद्रिया, बाकी सभी कर्मचारी, बाकी सभी स्थूल सूक्ष्म कर्मचारी, मन, बुद्धि, संस्कार धीरे धीरे वश में आ जाएंगे। तो इस जीवन का परम लक्ष्य जो है वो है 100% प्यूरिटी, संपूर्ण पवित्रता। इस संपूर्ण पवित्रता के लिए आज की इस भट्टी में हम ऐसी 21 टाइप्स ऑफ प्यूरिटी, 21 प्रकार की पवित्रता, 21 बातों में पवित्रता, पवित्रता के 21 कदम, ऐसी कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिसमें पवित्रता हो, इसकी चर्चा करेंगे। और रोज जैसा कि मर्यादाओं में बताया कि फॉर कीपिंग द चार्ट, अपने चार्ट में ये 21 बातें लिख के रखनी है, और कहां कहां अपवित्रता आई फिर उस पर काम करना है। पवित्र भव योगी भव का बाबा ने आते ही वरदान दिया है। पवित्रता ब्राह्मणों के लिए वरदान है, पवित्रता ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, पवित्रता जीवदान है, पवित्रता श्वास है, पवित्रता आधार स्तंभ है, पवित्रता रॉयल्टी है, पवित्रता लॉयल्टी है, पवित्रता पब्लिसिटी है, पवित्रता ही ब्यूटी है, पवित्रता ही एबिलिटी है, पवित्रता ही कैपेबिलिटी है, पवित्रता श्रेष्ठ श्रृंगार है। यदि पवित्रता को हटा दिया जाए तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी नहीं बचता। दादियों ने जितना सहन किया केवल पवित्रता के लिए, ब्रह्मा ने जो सहन किया पवित्रता के लिए, बाबा के पास कितने लोग आए, कितनों ने कहा बाबा आपकी संस्था से ये पवित्रता को हटा दो तो इस संस्था में हजारों लाखों लोग आ जाएंगे। अभी जो विरोध हो रहा है, अभी जो कोर्ट केसेस हो रही है, अभी जो ग्लानी कर रहे हैं, अभी जो पीड़ा यातनाएं दी जा रही है बहनों को, भाइयों को, वो सब खत्म हो जाएगी। केवल इस प्यूरिटी को हटा दो इस संस्था से तो बहुत आ जाएंगे यहां। बाबा ने उत्तर दिया था, मुझे भेड़ बकरियां नहीं चाहिए, दहाड़ लगाने वाली शेर और शेरनियां चाहिए। प्यूरिटी वह शेर और शेरनियों की दहाड़ है। मुरलियों में आता है, प्यूरिटी मासी का घर नहीं। आग और कपूस एक साथ और आग न लगे, संसार के लोग समझते असंभव, पर यहां संभव हुआ है। असंख्य हजारों भाई बहनों ने पवित्रता को धारण किया। कैसे धारण किया? क्या ऐसी बातें बाबा ने मुरलियों में बता दी जो अचानक से भोली भाली माताएं बहनें सब ने तुरंत पवित्रता को धारण कर लिया, जो कि साधु सन्यासी योगी महात्मा उदासी शंकराचार्य इमाम से लेके अवतार और तथा कथित देवताओं का जो वर्णन है शास्त्रों में, उन्हें भी कामुखी बताया गया है। बाबा ने आते ही स्मृति दिलाई जो आज तक किसी ने नहीं दिलाई, और स्मृति दिलाई तुम देवता थे। एकदम से आत्मा को याद आया कि मैं देवता था, देव था, देवी थी, और तुरंत पवित्रता को धारण किया। असंख्य अनगिनत भाई बहनों ने अपने जीवन को अर्पण कर दिया। कैसे कर दिया? प्यूरिटी को धारण कर लिया। कहां किसका जन्म, किस देश में जन्म, जहां कोई भाषा किसको समझ में नहीं आती, दूसरी संस्कृति है, दूसरी सभ्यता है, उन सभी ने भी प्यूरिटी को धारण कर लिया। कितना बल होगा संकल्पों में, उस प्यूरिटी की धारणा में, उस निश्चय में। तो हम सभी को प्यूरिटी को मजबूत करना है। प्यूरिटी ठीक तो सब कुछ ठीक, प्यूरिटी ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। चाहे कितना भी ज्ञान करे, योग करे, धारणा करे, सेवा करे, दिन रात सेंटरों पर सेवा करे, दिन रात मधुबन में सेवा करे, दिन रात यज्ञ की सेवा करे, परंतु प्यूरिटी अगर कमजोर है तो बल जमा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में संपूर्ण प्यूरिटी को धारण करना है। इस प्यूरिटी की 21 बातें, एक फॉर्मूला अपने किताब के ऊपर लिख के रखेंगे, 5, 5 + 2 + 2, 5 + 2 + 2 + 4 + 4 और + 4, 5, 2, 2, 4, 4, 4, ऐसी 21 बातें इस प्यूरिटी की। सबसे पहली पवित्रता है संकल्प की पवित्रता। सभी चीजों का फाउंडेशन जो है वो है विचार, संकल्प। सबसे पहले संकल्पों में अपवित्रता आती है, फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है, विचार करता है, प्लानिंग करता है, कल्पना करता, फिर बोलने लगता, फिर धीरे धीरे देखना, सुनना, सब चालू हो जाता है। फर्स्ट प्यूरिटी है विचारों की प्यूरिटी। जब जब विचार मलिन होंगे, विकारी होंगे, वो संकल्प धीरे धीरे किसी ना किसी समय कर्म बनेंगे और पाप कर्म में प्रवृत्त करेंगे व्यक्ति को। इसके लिए अपने विचारों को प्योर बनाना है। आज सुबह की साकार मुरली, होली हंस अर्थात शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले तंदुरुस्त, होली हंस अर्थात नीचे की कोई भी वस्तु को स्वीकार न करने वाले, होली हंस अर्थात स्वच्छता, पवित्रता, होली हंस अर्थात किसी भी बात से प्रभावित न होने वाले, विचारों को शुद्ध करना है। विचार संकल्प भोजन है आत्मा का। यदि भोजन ही अपवित्र होगा तो सब कुछ अपवित्र होगा। और शुद्ध भोजन कहां से मिलेगा? शुद्ध संकल्प मुरली से, नहीं तो कहां ढूंढेंगे? संसार में अकाल पड़ा है, अभाव है शुद्ध संकल्पों का। किसी के पास शुद्ध संकल्प नहीं। रास्ते पर चलने वाले लोगों से पूछो किस बात की चर्चा कर रहे हैं, संसार की, स्पोर्ट्स की, पॉलिटिक्स की, क्या उनके पास शुद्ध संकल्प है? क्या जो वो बात कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, उसमें कहीं पर भी शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प है? शायद नहीं, या बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास शुद्ध संकल्पों का खजाना है, पर वो खजाना उनके पास होगा जो मुरली का अध्ययन करेंगे, मुरली का चिंतन करेंगे। खाली सेंटर पर गए, मुरली लिखी, मुरली सुनी और डायरी बंद करके आ गए, इससे ये खजाना जमा नहीं होगा। हर एक को एक अलग डायरी बनानी है और जिसमें पावरफुल पॉइंट्स लिख के रखने हैं मुरली के, बड़े शब्दों में, बड़े अक्षरों में, केवल पावरफुल पॉइंट्स। या फिर ऐसी एक डायरी बनानी है, प्यूरिटी डायरी, जिसमें मुरली में रोज प्यूरिटी के विषय में जो बातें आती है वो अलग से लिख के रखनी है। संकल्पों को जमा करना है, गैदर पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स। मुरली में जैसे ही पावरफुल थॉट आता है, विचार आता है, संकल्प आता है, उसको वहां से निकालना, अलग से लिखना और फिर उसके ऊपर चिंतन करना। ऐसा बाबा ने क्यों कहा है, क्या अर्थ है इसका, किस लिए आया है बाबा? बचाने के लिए आए हैं द्रौपदियों को, अबलाए, कुब्जाए, गणिकाए, सबका उद्धार करने आए हैं। मुरली से पॉइंट्स लिखने हैं अलग से, पावरफुल पॉइंट्स। अपने संकल्पों को, विचारों को पवित्र करना है। अगर उसमें बहुत अशुद्धि है, विकार है, तो सबसे पहले वातावरण को चेंज करना है। सबसे पहले जिस संघ में हम हैं, जिस कंपनी में हम हैं, उससे स्वयं को बाहर निकालना है। वो संघ व्यक्तियों का हो सकता है या फिर सोशल मीडिया का हो सकता है। डिजिटल वर्ल्ड से कोई भी कनेक्शन हो सकता है। कहां से अपवित्रता आ रही है विचारों में? देखने से, सुनने से, हाथ लगाने से, वस्तु से, किसी चीज से? कौन सी चीज है, कौन से ट्रिगर्स है, कौन से फैक्टर है जो आते ही मन अपवित्र होता है? उस बात को, उस फैक्टर को, उस उत्तेजक को, उस फिलिप स्टिमुलस को हटा दो। क्या देखने से पवित्रता मन में घुसती है? अपवित्रता उसको हटाते जाओ। तो पहली पवित्रता है संकल्प की पवित्रता, दूसरी है बोल की पवित्रता। यदि बोल में विकारों की बदबू है, यदि बोल में विकारों की बास है, यदि ऐसे जोक्स, ऐसे कमेंट्स, ऐसी बातें करते हैं कि जिससे डबल मीनिंग, इनडायरेक्ट मीनिंग्स, और जिससे विकार की बदबू है, वो सारे बोल अपवित्र है। पहला तो ये। दूसरे, वो सारे बोल जो दूसरों को दुख दे, वो सारे बोल जिससे दूसरों का हृदय दुखे, आघात हो जाए, वो सारे बोल जो दूसरों को गिराए, अपमान करे, सब अपवित्रता में आते हैं। हमारे बोल कैसे हैं उसकी चेकिंग करनी है। सारे दिन भर कैसे बोला, कितना बोला, अधिक बोला, कम बोला। बाबा ने कहा है तुम्हारा एक एक शब्द महावाक्य होना चाहिए। यदि हमने आज तक जितना बोला वो सारा रिकॉर्ड कर दिया जाए बचपन से लेकर अब तक, तो काम का कितना होगा उसमें से? यदि हमने जितना बोला बचपन से लेकर अब तक उसकी कैसेट बनाई जाए, ठीक है, तो कितनी कैसेट बन जाएगी, और वो कैसेट इस पूरी हॉल में रख दिया जाए तो शायद ये जो छोटा सा एरिया है डायस का, उतना ही शायद हमने काम का बोला होगा, बाकी सब व्यर्थ। उतना भी नहीं होगा उतना भी नहीं होगा, बोलते ही जा रहे, बोलते ही जा रहे नॉन स्टॉप। तुम्हारा एक एक बोल समान वाला हो, तुम्हारा एक एक बोल वरदान हो, तुम्हारा एक एक बोल योग युक्त हो, तुम्हारा बोल कम धीरे मीठा दूसरों को उत्साहित करने वाला, गिराने वाला नहीं, कमेंट्स करने वाला नहीं, जले पर नमक छिड़कने वाला नहीं, बोल की पवित्रता। बोल का आधार एक दूसरी चीज है जो हम आगे देखेंगे, तो अपने बोल को क्या करना है, ठीक ठाक करना है। महात्मा गांधी ने अपना एक अनुभव लिखा है कि जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो एक आश्रम में गए, ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री, 6 अगस्त 1910, यंग इंडिया न्यूज़पेपर में यह अनुभव आया है, उस समय का यंग इंडिया। उन्होंने लिखा कि मैं उस आश्रम में गया तो देखा कि वहां सभी लोग मौन व्रत धारण किए हुए हैं। उस आश्रम के जितने सन्यासी थे, तो वो आश्रम के मठाध्यक्ष जो हेड थे उनसे मिले और उनको कहा कि यहां आप लोग मौन व्रत क्यों धारण करते हो? तो उस आश्रम के प्रमुख ने बताया, मनुष्य इतना कमजोर प्राणी है, उसे अभी तक ये कहां समझ में आया क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और जब तक हमको ये ना समझ में आए बोलना क्या है तब तक हम गलत ही बोलते रहेंगे, क्यों ना इससे अच्छा है कि हम चुप ही रहे। इसलिए इस आश्रम में नियम है कि जो भी नया व्यक्ति आता है कुछ साल तक उसे मौन ही रखा जाता है, एक ही शिक्षा दी जाती है, चुप रहना है, ताकि उसको समझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जब भी व्यक्ति बोलता है, एक तो जो सत्य है कभी उसको दबाता है, तो कभी अतिशयोक्ति करता है, या उसको तीसरा बदल कर बोलता है, वो वैसा ही नहीं बोलता है जैसा वो है चीज, तीन चीजें करता है, सप्रेस करता है, मॉडिफाई करता है, या एग्जेजरेट करता है, दबाएगा, परिवर्तन करेगा, या तो बड़ा चढ़ा कर बोलेगा। बोल की पवित्रता। तीसरी है कर्म की पवित्रता, जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें कितनी पवित्रता है। कोई ऐसा कर्म तो नहीं जो छिपा कर करना पड़े, कोई ऐसा कर्म तो नहीं जो हमने छिपा कर किया और अब डर है कि कोई दूसरों को पता ना चल जाए। वो हर कर्म जिसको छिपाना पड़े, वो हर कर्म जो श्रीमत के विपरीत हो, वो हर कर्म जिसमें निमित्त भावना हो, वो हर कर्म जो स्वार्थ हो, जो हर कर्म जिसमें बाबा की याद ना हो, हर वो कर्म जो आत्माभिमान स्थिति में नहीं किया गया, हर वो कर्म जिसमें डिटैचमेंट नहीं, हर वो कर्म जिसमें अटेंशन नहीं, हर वो कर्म जिसमें पॉजिटिविटी नहीं थी, शायद अपवित्रता है। इसके लिए साकार मुरली में तो आया है, संकल्प में अपवित्रता आए चलेगी परंतु कर्म तक नहीं आनी चाहिए, परंतु अव्यक्त वाणियों में बाबा ने संकल्प के लिए भी कहा है संकल्प भी अपवित्र नहीं। तो संकल्प, बोल, कर्म, तीन। चौथा है संबंध संपर्क की पवित्रता, जो संबंध हमने बनाए हैं लोगों से, जिनके संपर्क में है, उन संबंधों में दैहिक आकर्षण ना हो, वो संबंधों का आधार काम वासना ना हो, उस संबंध का आधार सेवा हो, बीच में ज्ञान कटार हो, दो व्यक्तियों के बीच पति पत्नी, भाई बहन, मित्र, दो साथी, दो दोस्त, दो रिश्तेदार, दो पड़ोसी, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, सभी संबंधों के बीच ज्ञान तलवार हो, नहीं तो वो संबंध, वो संपर्क नरक में ले जाएगा। तो संबंध संपर्क को प्योर बनाते जाना। ऐसे अगर संबंध बना के रखे कि जिसमें ऑलरेडी अपवित्रता आने की संभावना बहुत ज्यादा है, अच्छा है कि उस संबंध को तोड़ दिया जाए हमेशा के लिए युक्ति से, नहीं तो वही संबंध नरक की ओर ले जाएगा। पांचवा, चलन की पवित्रता, बिहेवियर। संकल्प बहुत अच्छे कर रहे हैं, बोलते भी अच्छे हैं, कर्म भी ठीक है, परंतु कभी कभी व्यवहार में अपवित्रता है, बिहेवियर, क्योंकि पुरानी कोई आदत चल रही है, ऐसे कोई चलन है जिससे अपवित्रता झलकती है, ऐसी चलन को आइडेंटिफाई करना है, देखना है और उसको हटाना है। तो ये पहली पांच चीजें, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध संपर्क और चलन। फाइव प्लस टू, अभी दो और, तन की पवित्रता और धन की पवित्रता। मन बोल दिया, संकल्प में आ गया, तन और धन, हमारा ये जो शरीर है उसकी पवित्रता। दो प्रकार, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल। एक्सटर्नल अर्थात क्लीनलीनेस, स्नान, और इंटरनल अर्थात शरीर की पवित्रता, अर्थात शरीर में उत्तेजनाएं ना हो विकार की, शरीर शांत, शरीर शीतल। यदि शरीर में वो सब डाला जा रहा है जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, चाहे वो भोजन हो या मादक पदार्थ हो या कोई उत्तेजक वस्तु हो, जिससे इंद्रियां चलायमान होती है, देह और देह के भोग, सारी अपवित्रता है। शरीर की पवित्रता अर्थात शरीर अनटच्ड रहे, कोई पुरुष इसे स्पर्श न करे, ऐसी अनटच्ड प्यूरिटी, तन की पवित्रता। फिर है धन की पवित्रता। धन कहां से आ रहा है, कैसा कमाया जा रहा है, किसका शोषण तो नहीं हो रहा है, किसी को सताकर तो नहीं आ रहा है, किसी को पीड़ा देकर तो नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो किस माध्यम से, किस मार्ग से आ रहा है, उसकी जांच, धन की पवित्रता। और जो भी धन आए सैलरी मिलने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले वो सारी सैलरी सबसे पहले बाबा के पास रख दो, फिर उसको लेना है। हमने एक सेंटर पर देखा कि जो बहनें थी, जो भी कुछ लाती थी सब कुछ पहले बाबा के पास रख देती, सब्जी लाएंगी तो पहले बाबा के ट्रांसलाइट के पास, जो भी छोटी छोटी चीजें लाएगी सब कुछ पहले बाबा, जो भी मिले धन वो सब पहले उसको दे दो, फिर उससे लेना, फिर वो अब हमारा नहीं रहा है, हम ट्रस्टी है, वो हमें दे रहा है। धन कैसे कमाया जा रहा है, किस मार्ग से कमाया जा रहा है, उस धन में भी प्योर धन हो, पवित्र धन। रमेश भाई जी की किताब लिखी हुई है पवित्र धन। तो धन की पवित्रता, फाइव प्लस टू, प्लस टू आगे और दो, बुद्धि की पवित्रता और संस्कारों की पवित्रता। बुद्धि किन चीजों को धारण कर रही है, यदि उसे व्यर्थ दिखाया जाए, खिलाया जाए, बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो अपवित्रता को खाएगी, धारण करेगी। बुद्धि को स्वच्छ करना है। बाबा कहते हैं हंस बुद्धि, बाबा कहते हैं रिफाइंड बुद्धि, विशाल बुद्धि, पवित्र बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, एकरस बुद्धि, प्रीत बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, श्रीयुड बुद्धि, कितनी अलग अलग बुद्धि मुरलियों में आई है। ऐसी अपनी शुद्ध बुद्धि बनानी है, विशाल बुद्धि को पवित्र करना है। और बुद्धि पवित्र होगी क्या, उसे खिलाया जा रहा है आंखों से और कानों से, उससे। फिर है संस्कारों की पवित्रता। संस्कार हमारे यदि ज्ञान में आने के पहले के कुछ संस्कार है जो अपवित्र थे और जो ज्ञान में आने के बाद भी अभी तक नहीं बदले, उनको आइडेंटिफाई करना है वो कौन से संस्कार है जो अब तक नहीं गए और जिससे अपवित्रता आ जाती है, उन संस्कारों को प्यूरिफाई करना है। अगला है 4 + 4 = 5 + 2 = 2, अभी 4। भाव और भावनाएं, दूसरा स्मृति, तीसरा कल्पना और चौथा स्वप्न, ये 4 चीजों की पवित्रता। भावनाओं में यदि अपवित्रता है, यदि किसी को हमने अपना पति ही समझ के रखा है अब तक, किसी को पत्नी ही समझ के रखा है, ज्ञान में आने के बाद भी तो अपवित्रता आएगी, क्योंकि भाव परिवर्तन नहीं हुआ है। सभी आत्माएं, महात्मा गांधी जब श्रीलंका गए थे तो उनके साथ उनकी पत्नी थी और वो अपनी पत्नी को बा कहते थे, तो मंच संचालक था, उनको लगा उनकी माता है, तो उसने वैसे ही अनाउंस किया कि आज हमारे बीच महात्मा गांधी आए हैं और साथ में उनकी मां भी आई है। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने फिर अपना भाषण पूरा दिया और लास्ट में कहा कि वैसे आपने सही कहा, ये मेरी पत्नी थी, पर जब से ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया 1906, तब से ये मेरी मां है। भाव ही बदल दिया। रामकृष्ण परमहंस ने अपनी ही पत्नी की क्या की थी, पूजा, क्या समझकर, मां समझकर, षोडशी पूजा। भाव ही बदल दिया। जब भाव ही बदल गया तो आगे कुछ नहीं होगा फिर। और जब तक भाव है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो कुछ कुछ होगा गड़बड़। जब भाव ही बदल दिया तो फिर नहीं होगा। संबंध को ही परिवर्तन कर दिया, मां ही बना दो उसको। कुछ समय के बाद ऐसा होता है, शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी का संबंध जब तक, उसमें कुछ आंकड़े भी दिए हैं, चौथा बच्चा या पांचवा, उसके बाद एक समय आता है कि पति ही बच्चा बन जाए या बना दिया जाए, अपने पति को ही अपना बच्चा समझना और उसकी हम मां हैं। तो भाव की पवित्रता। फिर है कल्पना की पवित्रता, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। व्यक्ति बैठ के सोचते रहता है, मेरा भी कोई साथी मिल जाए, मैं भी किसी के साथ घूम रहा हूं, जो जो देखता है संसार में वो सोचता है मैं भी करूं, और कल्पनाएं रचता है मन ही मन, सेंशुअल फैंटेसीज, और वो कल्पनाएं अशुद्ध होती है। अगर कल्पनाओं को शुद्ध करना है तो नई नई ड्रिल्स बनानी है मुरली से। जैसे मैं होली हंस हूं तो अपने आप को देखना है हंस के रूप में, मैं मानसरोवर में हूं, ये नई कल्पनाएं ज्ञान वाली। दूसरी विकार की कल्पनाएं व्यक्ति करते हैं और वो कल्पनाएं उसे नीचे गिराती है। कल्पना की पवित्रता, प्यूरिटी ऑफ इमेजिनेशन। नेक्स्ट है स्मृति की पवित्रता। स्मृति अर्थात पास्ट के भोग, उनकी यादें अब भी है, अभी पवित्र जीवन है, परंतु ज्ञान में आने के पहले के जीवन के पाप, विकार, विकर्म, भोग, उनकी स्मृतियां वो अब भी है, उनको कैसे नष्ट करेंगे। जैसे एक इंक का बॉटल है, स्याही की बॉटल, उसकी इंक खत्म हो गई है, अब इंक उसको साफ करना है, उसको नल के नीचे रखा जाता है, नल का पानी उसमें आएगा और पहले पहले गंदा पानी बाहर आएगा, पर थोड़े देर के बाद अगर नया पानी, स्वच्छ पानी डालते जाओ तो एक समय आएगा जो स्वच्छ पानी आएगा। तो विधि है नया, नई स्मृतियां उसमें डालते जाना पानी, तो वो इंक की बॉटल साफ होगी। उसी तरह अवचेतन मन भी है, जन्म जन्म के विकर्म पापों की स्मृतियां उसमें समाई है, पवित्रता उसमें डालते जाओ, ज्ञान उसमें डालते जाओ तो शुद्ध पानी एक दिन आने लगेगा। पर डरना नहीं जब अपवित्र पानी बाहर आएगा, ऐसा भी होगा अचानक से। स्मृतियां क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है, इसके लिए सावधान। चौथा है स्वप्न की पवित्रता। स्वप्न हमारे हाथ में नहीं है, परंतु व्यक्ति वही देखता है जो वो दिन भर सोचते रहता है। दिन भर जबरदस्ती कोई अपने आप को भूखा रखे तो रात में ब्रह्मा भोजन दिखता है स्वप्न में। दिन भर अपने आप को जबरदस्ती कोई नियम दे दे तो रात में वही दिखता है। दमन जिसका किया वो रात में दिखेगा, अतृप्त जो रहा वो रात में दिखेगा, दिन भर जो चला वो रात में दिखेगा। अगर दिन भर योग की बातें, ज्ञान की बातें में ही रमन करते रहे तो रात में भी ज्ञान युक्त स्वप्न आएंगे। तो ये चार, कल्पना, भाव, कल्पना, स्मृति और स्वप्न, 5+2+2 और ये 4। अभी अगले चार, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें। इन चार चीजों की पवित्रता। हमारी दृष्टि कैसी है, शरीर को देखती है या आत्मा को, सांप को देखती है या मणि को, दैहिक सौंदर्य पर दृष्टि जाती है या आत्मा के सौंदर्य पर, यह देखती है यह सुंदर है असुंदर है, काला है गोरा है मोटा है पतला है, किस जाति का है किस कुल का है किस धर्म का है, गरीब है अमीर है, सब देहवान। अपनी दृष्टि को आत्मिक, सब आत्माएं हैं, दृष्टि की पवित्रता। दूसरा है वृत्ति, वो उससे भी सूक्ष्म है। एक है संकल्प और उसी से जो तरंगे उत्पन्न होती है मन के झील में, उस तरंगों को, उन वृत्ताकार बातों को वृत्ति कहा जाता है। जो संकल्प होगा उसी अनुसार वृत्ति, दूसरा वृत्ति, तीसरा दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, एटीट्यूड, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। किसी किसी की आदत है हर चीज में निगेटिव सोचते हैं, क्या करते हैं, हर चीज में निगेटिव सोचते हैं, चाहे कितनी भी अच्छी चीज हो निगेटिव ढूंढ ही लेते हैं उसमें। और किसी किसी की ऐसी आदत होती है जो पॉजिटिव देख ही लेते हैं। आज सुबह की मुरली में एक वाक्य आया है, शायद सबने पढ़ा या सुना होगा, किसी किसी की ऐसी पक्की आदत हो गई है हम देह नहीं हम आत्मा है। आज की मुरली में एक लाइन आई है एक जगह, किसी किसी की ऐसी पक्की आदत हो गई है हम देह नहीं आत्मा। तो एटीट्यूड, एटीट्यूड को थोड़ा ऊंचा उठाना है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का भाव भरना है उसमें, हर चीज के लिए धन्यवाद, जो हुआ बहुत अच्छा, सबको धन्यवाद। दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और चौथा है आदतें, हैबिट्स। हमारी जो आदतें हैं, क्या सारी आदतें ज्ञान युक्त है, या ऐसी कोई आदत है टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसी में फंसे हुए हैं दिन रात और टाइम वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। ऐसी आदतें बन गई है जो ज्ञान के विपरीत है एकदम, पर चालू है क्योंकि बोलने वाला कोई नहीं और टोकने वाला कोई नहीं और उसको हम चला रहे हैं, वो भी अपवित्रता है। तो ये चार, लास्ट चार, सुनने की पवित्रता, सुनना, हियरिंग। क्या हम सुन रहे हैं? फिल्मों के गीत सुन रहे हैं या भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, या संसार के गीतों में रस है या बाबा के गीतों में रस है? फिल्मों के गीत किसको किसको अच्छे लगते हैं, ईमानदारी से बताओ। बहुत होंगे, कुछ कुछ गीत अच्छे भी है। गीत सुनो परंतु उनको ज्ञान से जोड़ो। जैसे आज की पूरी मुरली एक गीत पर है, तकदीर जगा कर आई हूं। उस समय फिल्मों के गीत रहते थे, उस एक गीत पर पूरी मुरली। जो भी गीत सुनो उसको ज्ञान में कन्वर्ट कर दो, जैसे कि वो सांसारिक नहीं है, बाबा के लिए है। अगर सुनते भी और अच्छे भी लगते हैं, किसी किसी गीत में बहुत माधुर्य स्वीटनेस होती है, परंतु उस गीत को खाली कनरस ना हो, कन्वर्ट कर दो उसको, स्पिरिचुअल बना दो। साजन और सजनी वो जो गा रहे हैं, हम उसको बाबा के लिए गाएं। तो क्या सुना जा रहा है? एक, उसकी पवित्रता। दूसरा, खाने की पवित्रता। मुख्य दो काम है, एक बोलना और दूसरा टेस्ट। बोल हमने बोल दिया, अभी बात कर रहे खाने की पवित्रता। क्या हम खा रहे हैं, किसकी याद में खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? हमने सुबह की क्लास में सुना भोजन में, फूड, एफ फॉर फूड। तो अपने खान पान में प्यूरिटी लानी है। तीसरा है स्पर्श की पवित्रता, टच। हमारा स्पर्श इतना ही पवित्र हो जैसे एक मां का स्पर्श होता है अपने बच्चे से। हमारे स्पर्श में विकार ना हो, विकार की कामना ना हो, इतना प्योर स्पर्श हो। जिस स्पर्श में अपवित्रता है वो लगते ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति की भावना ठीक नहीं, बहुत जल्दी जान लेते हैं। जान सका जा सकता है, इतना कठिन नहीं है वो काम। हमारा स्पर्श पवित्र हो। और लास्ट 21वीं प्रकार पवित्रता की, वो है प्रकार लिखना, लिखने की पवित्रता। क्या मैसेज टाइप किया जा रहा है, क्या मेल सेंड किया जा रहा है? आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, फटाफट फटाफट भेजते रहते हैं, टाइप किया भेजा, टाइप किया भेजा, और वो टाइप करते करते बहुत सारी ऐसी चीजें टाइप कर देते हैं जो श्रीमत नहीं है, या कुछ लिखना। हमारे लिखने में भी लिखा हुआ कोई पढ़े तो उसको उमंग आए, उत्साह आए, नव शक्ति संचार हो जाए आत्मा में पवित्रता की। तो ऐसी ये 21 प्रकार की पवित्रता है। 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, फिर क्लास पूरा करेंगे। पहली, संकल्प। दूसरा, बोल। तीसरा, कर्म। चौथा, संबंध संपर्क। पांचवा, चलन। अगले दो, बुद्धि और तन, शरीर, तन और धन। अगला, बुद्धि और संस्कार। अगले चार, भावना, स्मृति, कल्पना और स्वप्न। अगले चार, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण, आदतें। अगले चार लास्ट, सुनना, खाना, स्पर्श और लास्ट लिखना। ऐसी 21 जन्मों के लिए हमें 21 प्रकार की पवित्रता धारण करनी है। सभी एक बार फिर योग युक्त होकर बैठ जाएंगे, गीत बजेगा, गीत में स्वयं को जो जो गीत के शब्द होंगे पवित्रता के, उस पवित्रता के एक एक शब्दों में स्वयं को स्थित करते जाना है। और जब भी इसके बाद पवित्रता शब्द सुने, ये सारी की सारी 21 बातें बुद्धि में लानी है। यहां से जाने के बाद फिर एक बार रिवाइज करो पॉइंट्स को, शाम को फिर रिवाइज करो, कल एक बार फिर रिवाइज करो, अगले 5 दिन रोज सुबह शाम रिवाइज करते रहो, ताकि वो सारी की सारी याद हो जाए। ओम शांति।